તારીખ 11/5/1995 શ્રી દ્રવદ્રષ્ટિ પ્રકાશ બુલ નંબર 30 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 248
પૂજ્ય શ્રી નિહાલચંદજી સુગાણીજી કા જન્મ 84માં જન્મદિન છે ગુરુદેવ जो भावी तीर्थंकर होने वाले हैं आज से चार भाव के बाद उस गुरुदेव का समोसरण का कार्य यहाँ से इस भाव से चालू हुआ है। तीर्थंकर परम गुरु होते हैं, महती धर्म प्रभावना उनसे होती है, उस प्रभावना का शुभारंभ इस भव से गुरुदेव को हुआ है। श्वेतांबर संप्रदाय में जन्म होने के बावजूद भी एक क्रांतिकारी कदम उठाया उन्होंने, दिगंबर धर्म को ग्रहण करके सारे भारत में गुरुदेव से बहुत धर्म प्रभावना हुई। उस धर्म प्रभावना के एक बहुत सुंदर प्रकरण की घटना भी बनी, जो विक्रम संवत 2002 में सुगानी जी पहले पहले सोनगढ़ आए थे। आत्मधर्म मिलते ही गुरुदेव के प्रति उनका आकर्षण हुआ, वो सोनगढ़ आए। आत्मकल्याण के अत्यंत अत्यंत भावना लेकर के आए थे, उत्तम मुमुक्षुता की प्राप्ति करके आए थे, तो उनको ज्ञान प्राप्ति में देर नहीं लगी। गुरुदेव की वाणी में जो सामर्थ्य है कि एक ही प्रवचन सुनने वाले को भी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन हो सकता है, इसका एक जीवंत सबूत स्वयं सुगानी जी है। इसलिए गुरुदेव के प्रभावना योग के प्रकरण में सुगानी जी की ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है, ये घटना एक अनूठी घटना हो गई। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कितने साल तक हम तत्वज्ञान का अभ्यास करते हैं, फिर भी सम्यक दर्शन कितना दुर्लभ है। एक व्याख्यान सुनने पर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान सहानुभूति हो जाए, ये कोई मामूली बात तो नहीं है। ये हमारे स्वयं के अनुभव से हम समझ सकते हैं। लेकिन इनका जो पुरुषार्थ का आवेग था, संवेग था, वो कोई अपूर्व और अतिशय मात्रा में थे। व्याख्यान के दौरान ही उन्होंने गुरुदेव को पहचाना, गुरुदेव की अंतरंग आत्म परिणति देखी और गुरुदेव के व्यक्तित्व को पहचाना और वो परिणति अंतर परिणति देख करके वो खुद ही अपने आत्मभाव में आने लगे। ज्ञानी गुरु की पहचान हुई, साथ ही साथ अंतर प्रयत्न से वेद ज्ञान के प्रयास में आत्मस्वरूप की भी उनको पहचान हुई। और आत्मस्वरूप की पहचान होने से आत्मस्वरूप की जो महिमा है वो महिमा इतनी मात्रा में जागृत हो गई कि 24 घंटे के अंदर अंदर वो स्वानुभूति को प्राप्त हुए थे। पुरुषार्थ की प्रक्रिया वर्तमान काल में इतनी तेज मात्रा में होती है, ऐसा शायद ये पहली घटना होगी कि गुरु के परिचय में आने से ही 24 घंटे में स्वानुभव हो जाए। उनको पुरुषार्थ को दर्शाने में क्या देखने में देर नहीं लगेगी। जो द्रवदृष्टि प्रकाश पड़ेगा उनको स्वयं को ये परिचय हो ही जाएगा। आज भी उनका जन्मदिन होने से इनके ही वचनामृत का रसपान हम लोग करेंगे। जो उनके स्वयं की लेखनी में आया है तो पत्रांक 30 नंबर का पत्रांक का स्वाध्याय होगा, पृष्ठ संख्या है 32। नवंबर 1962 में लिखा हुआ ये पत्र है। आत्मार्थी मुख पर लिखा हुआ ये पत्र है। वात्सल्य प्रेरित, वात्सल्य अनुराग प्रेरित आपका पत्र कुटुंबियों का दीपावली कार्ड मिला। पत्र के साथ का दीपावली कार्ड भी मुमुक्षु ने भेजा है और समाचार लिखा है कि श्री सेठिया जी इन दिनों में सोनगढ़ पहुंचे हैं, वो भी जाना। अब गुरुदेव की भक्ति करते हैं, ऐसे गुरुदेव के प्रति बहुमान करते हैं कि ज्ञानानंदी गढ़। गुरुदेव कैसे हैं? सोनगढ़ है तो गुरुदेव सोनगढ़ में ज्ञानानंदी गढ़ है, ज्ञान और आनंद का गढ़ है, इस नजर से वो गुरुदेव को देखते थे। ज्ञानानंदी गढ़ वीत राग प्रधानी, गुरुदेव के परिणाम में वितरागता की प्रधानता थी। वो वितरागता उन्होंने देखी थी और ऐसा नियम है कि जो धर्मात्मा के अंतर वितराग परिणति को देखते हैं उनको वितरागता अल्पकाल में उत्पन्न हो जाती है। सिर्फ सुनते रहते हैं और उनकी वितराग दशा को नहीं देखते हैं, उनको सुनते सुनते काम नहीं होता, सुनने से काम नहीं होता, देखने से काम होता है। ये परिणाम अपने परिणाम को प्रकट होने का खास प्रकार है। सुनते सुनते हो जाता तो सुनने वाले को बहुत आए और बहुतों ने सुना, लेकिन सुनते सुनते नहीं होता है। लेकिन अगर ज्ञानी के अंतर परिणाम देखने में आते हैं तो उनकी असर उतनी पहुंचती है देखने वाले के परिणाम पर कि उसी प्रकार के भाव आविर्भाव होने लग जाते हैं और यही प्रत्यक्ष गुरु योग का, प्रत्यक्ष ज्ञानी के योग का एक रहस्य है। अगर कोई सीधा प्रश्न ऐसा पूछे कि ज्ञानी के प्रत्यक्ष सत्समागम का महत्व कौन सा है और इस ऐसे परम सत्संग का रहस्य क्या हो सकता है, तो उस प्रकार का वो रहस्य है कि ज्ञानी की परिणति का साक्षात दर्शन होता है, पर जब दर्शन होता है तब दर्शन करने वाले को भी यही दशा की प्राप्ति हो जाए। ऐसी एक रहस्यमय घटना निमित्त नैमित्तिक संबंध से हो जाती है और यही प्रसंग का महत्व है, प्रत्यक्ष सत्संग का यही महत्व है। ऐसी घटना घटे बिना किसी को भी आत्मलाभ हो या हुआ हो या भविष्य में हो सकता हो ऐसा बनता नहीं है। एक बार तो ज्ञानी के आत्मा का दर्शन होता है और आत्मा परमात्मा स्वरूप होने से ज्ञानी में परमात्मा का दर्शन होता है और यही परमात्मा का दर्शन करने वाले को निज परमात्मा का दर्शन के प्रति ले जाता है। इसके सिवा इस घटना के हुए बिना कभी निज परमात्मा का दर्शन होने की संभावना नहीं होती है। इसलिए ज्ञानी के प्रत्यक्ष सत्समागम का बहुत महत्व है, इसके बराबर कोई महत्व बाह्य घटना में। तो गुरुदेव के प्रति उनको भक्ति भी बहुत मात्रा में आई है, अलौकिक भक्ति किया है अनेक पत्रों में। यहां लिखते हैं कि ज्ञानानंदी गण वीतराग प्रधानी गुरुदेव के प्रशस्त रागांश निमित्तक सिंह गर्जनाओं से गुरुदेव के जो प्रवचन थे उनको उपमा दी है सिंह गर्जना की। अपनी चर्चा में तो उन्होंने कहा ही था कि अगर कोई बाहर में सिंह की गर्जना सुनते हैं तो उनको भय होता है, कह रहे कहीं अगल बगल में सिंह है और सिंह को तो वास आती है मनुष्य प्राणी की, अगल बगल में कहीं होगा तो आ जाएगा और अपने को खा जाएगा। सिंह की गर्जना सुनने वाले को भय होता है, जबकि गुरुदेव की सिंह गर्जना सुनने से निर्भयता होती है। क्या सिंह के विषय में उन्होंने एक भाषा अलंकार बनाया और उपमा दे दिया और वो सिंह गर्जना गुरुदेव के प्रशस्त राग अंशन के निमित्त से उत्पन्न हुई। गुरुदेव जगत गुरु होने वाले हैं तो उनके वाणी से बहुत से लोगों को लाभ हुआ। तो ऐसे प्रशस्त राग के अंश से, राग पूरा नहीं होता, ज्ञान को एक अंश मात्र में होता है, चारित्र के एक अंश में राग होता है प्रशस्त और चारित्र गुण के एक अंश में वीतरागता चालू रहती है। राग अंश के निमित्त से वाणी निकलती है और इस वाणी के निमित्त से अनेक जीवों को आत्म कल्याण का मार्ग है उसका मार्गदर्शन मिलता है। 47 नयों पर प्रवचन सार के परिशिष्ट में भगवान अमृतचंद्र आचार्य ने 47 नय की परिभाषा लिखी है। उस नयों पर पुण्यवान मुमुक्षुओं को उल्लासित प्रवचनों का लाभ हुआ, ये समाचार जिसे मुमुक्षु ने लिखा था जानकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। ऐसा समाचार जानकर उनको भी प्रसन्नता हुई। पुण्य अभाव योग से इस अवसर से मुझे वंचित होना पड़ा, मैं वहां सरीक नहीं हो सका, उपस्थित नहीं हो सका। एक पुण्य अभाव का योग था, अगर पुण्य का सद्भाव होता तो मेरी भी उपस्थिति होती, लेकिन पुण्य अभाव योग से इस अवसर से मुझे वंचित होना पड़ा, इसका खेद रहा। अब कहते हैं कि श्री गुरुदेव के प्रवचनों का मुख्य सार मैंने यह लिया है। देखिए, बात तो अपने परिणमन से बोल कर लिख रहे हैं, लेकिन किसके खाते चढ़ाते हैं?
गुरुदेव
के खाते चढ़ाते हैं। कोई भी ज्ञानी या मुमुक्षु सही रूप से तत्व का प्रतिपादन करेगा, लेकिन मैं कहता हूं ऐसी बात नहीं करेगा। जिस ज्ञानी के निमित्त से उनको ये बात समझ में आई और परिणमन भी हुआ हो, लेकिन बात करेंगे अपने गुरु के नाम से, अपने नाम से नहीं करेंगे। यही ऐसा सहज विनय का भाव आए बिना नहीं रहता। वर्तमान में ही क्या सार लिया है कि वर्तमान में ही परिपूर्ण हूं। मैंने तो ये बात समझी कि वे गुरुदेव अपने प्रवचन में सारभूत जो बात करते हैं वो ऐसे बात करते हैं कि मेरा आत्मा वर्तमान में ही परिपूर्ण है, और परिपूर्ण होने से अन्य पदार्थ की अपेक्षा मुझे नहीं होती। स्वरूप ज्ञान से वैराग्य कैसे उत्पन्न होता है, उदासीनता कैसे आती है, उपेक्षा भाव कैसे आता है पर पदार्थ के प्रति, कि अपनी परिपूर्णता का अनुभव होता है कि मैं सर्व गुणों से संपन्न हूं और मेरी परिपूर्णता उतनी है कि परिपूर्णता होने से मुझे कोई पदार्थ की जरूरत नहीं है, अपेक्षा नहीं है। निरालंब निरपेक्ष पदार्थ हूं, किसी का आलंबन की जरूरत नहीं, किसी की अपेक्षा की जरूरत नहीं है। ऐसा पूर्ण स्वरूप का जो अनुभव करता है उनको ऐसा महसूस होता है कि जैसा एक कलश हो, पूरा भरा हो, एक बिंदु भी उसमें डाले तो नीचे गिर जाए, क्योंकि कलश में जगह नहीं है। ऐसे मेरे स्वरूप में कोई भी द्रव्य भाव आने की गुंजाइश नहीं है। मैं मेरे स्वरूप से परिपूर्ण और सर्वगुणों से संपन्न हूं। किसी भी पदार्थ की अपेक्षा आवश्यकता नहीं, इसलिए मैं मेरे स्वरूप में ही संतुष्ट रहता हूं। और अन्य द्रव्य भाव से सहज उदासीनता छा जाती है। वर्तमान से ही देव अधिक पर अथवा उन आश्रित राग से किंचित मात्र लाभ का कारण नहीं। देव अधिक मैंने देव गुरु और शास्त्र अधिक मिट्टी में दे देता। वर्तमान से ही जो देव अधिक पर पदार्थ है अथवा देव गुरु शास्त्र आश्रित जो राग होता है, ऐसे परिणामों से, पराश्रित परिणामों से किंचित मात्र लाभ का कारण नहीं होता। राग से वितरागता
नहीं होती,
राग से आत्मलाभ नहीं होता, क्योंकि राग खुद मलिन है और आत्मस्वरूप तो पवित्र है। राग स्वयं दुख रूप है, दुखदायक है और आत्मा सुख स्वरूप है, इसलिए राग आत्म स्वभाव से विरुद्ध है और आत्म स्वभाव सुख और शांति से अविरुद्ध है। इसलिए विरुद्ध तत्व से विरुद्ध तत्व को लाभ नहीं होता, ऐसा कोई कारण भी नहीं होता। राग में ऐसा कोई निमित्त तत्व नहीं है कि इससे कोई आत्मलाभ हो सके। फिर भी ऐसे परिणामों से कोई लाभ मानता है वही अलाभ है, वो नुकसान है, क्योंकि मान्यता विरुद्ध हो गई।
आगे
किसी भी देवादिक उत्कृष्ट निमित्त है, फिर भी उसके प्रति जो हमारा राग है वो राग लाभ का कारण नहीं है, और उनसे लाभ होता है ये मान्यता, ये श्रद्धा नुकसान का कारण होता है, लाभ का कारण नहीं होता है। जब तक पर पदार्थ से लाभ की मान्यता रहती है, पर पदार्थ के प्रति के परिणाम जो है वो शांत नहीं होते, बंद नहीं होते, चालू ही चालू हो जाता है। वेदन के अलावा, ज्ञान वेदन के अलावा मेरे में भी जो कोई अन्य क्रिया रागादि की होती है वो जीव की नहीं है। जो स्वसंवेदन है वही मेरी क्रिया है, मेरी क्रिया यहाँ समाप्त तो होती है। इसके अलावा जो भी क्रिया है रागादि की, वो क्रिया मेरी
नहीं है,
नहीं है। जीव की नहीं है मतलब मेरी नहीं,
मेरी नहीं है।
शरीर आश्रित अथवा पर आश्रित आकुलित वेदन जो होता है शरीर के प्रति परिणाम जाता है, या पर पदार्थ के प्रति परिणाम जाता है, तो उस परिणाम में नियम से आकुलता का अनुभव होता है। अनुभव कहो या वेदन कहो, एक ही बात है। शरीराश्रित अथवा पराश्रित आकुलित वेदन को समकालीन ज्ञान वेदन द्वारा उसी काल में, पीछे से नहीं, समकाल मैंने उसी काल में अपने ज्ञान वेदन द्वारा गौण करते करते नाश करना मुमुक्षुओं का ध्येय होता है, या मुमुक्षुओं की कार्य पद्धति ऐसी होनी चाहिए तो वर्तमान ज्ञान वेदन से ही आकुलित रागादि का वेदन को गौण करें और अपने ज्ञान वेदन में आगे बढ़ें, यही मुमुक्षु का ध्येय है। यह ज्ञान वेदन कैसे उत्पन्न होता है कि यह ज्ञान वेदन अखंड त्रिकाली अपरिणामी ध्रुव अस्तित्वमयी स्वपने के अनुभव में सहज ही उदय होता है। ज्ञान विदन कैसे होता है? ऐसे तो ज्ञान विदन तिरोभूत रूप से तो अबाल गोपाल सबको है ही, जो समय सार की 17-18 गाथा में अमृतचंद्राचार्य देव ने लिखा, ये ज्ञान विदन तिरोभूत रूप में है, इससे ये मालूम पड़ता। लेकिन जो अपना अखंड त्रिकाली अपरिणामी ध्रुव अस्तित्व है, वही अपना स्वस्वरूप है, उस मयी स्वपने के अनुभव में सहज ही ज्ञान विदन आविर्भूत हो जाता है और अपने को प्रकट रूप से अनुभव में मालूम पड़ जाता है। इस प्रकार से वो उदय होता है, ऐसा कहने में आता है। उदय होता है मैंने आविर्भूत होता है, जो तिरोभूत था वो आविर्भूत हो गया, उसी को कहा कि उदय हुआ यानी प्रकट हुआ, ऐसा कहने में आता है। अपना जो स्वरूप है वो अखंड है। कैसा है अपना स्वरूप?
अखंड।
अपना स्वरूप खंड खंड नहीं है, क्षेत्र से भी अखंड है और स्वभाव से भी अखंड है, द्रव्य से भी अखंड है और अनुभव के भाव से भी अखंड है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अपना स्वरूप अखंड है, पर त्रिकाल ऐसा है। त्रिकाली है मतलब त्रिकाल, अनंत भविष्य भूतकाल में ऐसा ही था, वर्तमान में ऐसा अनुभव में वेदन के दौरान आ रहा है और भविष्य में अनंत काल पर्यंत मेरा स्वरूप ऐसा ही रहने वाला है। इसलिए त्रिकाली अखंड त्रिकाली है और अपरिणामी है। स्वभाव रूप से देखा जाए तो स्वभाव अपरिणामी है, परिणाम से भिन्न है, अतिरिक्त है। अरे परिणाम से दूर है, नियम साहब तो ये कहता है कि परिणाम से
दूर है,
अत्यंत दूर है। ये शक्ति का पिंड है। क्या है?
शक्ति
का पिंड है, सामर्थ्य का पिंड है। एक ही गुण का अनंत सामर्थ्य है और ऐसे अनंत गुण का अभेद एक रूप द्रव्य स्वभाव है, वो अपरिणामी है। अपरिणामी पर खास पूज्य सुगानी जी का कहने का वजन रहता है, इसके पीछे खास कारण है कि अनादि से जीव परिणाम दृष्टि मैंने पर्याय दृष्टि रहा है। जो पर्याय अनुभव में आ रही और विभाव रूप अनादि से चालू होकर अनुभव में आ रही है, ऐसे कर्म जनित पर्याय कर्म जनित अवस्था उतना ही मैं हूं, ऐसा ही मैं हूं, ऐसा सब मिथ्या दृष्टि जीव को पर्याय जितना ही अपना स्वरूप अनुभव में आता रहता है। पर परिणाम पर की दृष्टि हटती नहीं है, मिटती नहीं है, इसलिए मिथ्यात्व का अभाव नहीं होता। मिथ्यात्व का अभाव होने के लिए अपरिणामी द्रव्य दृष्टि होना जरूरी है, आवश्यक है। इसलिए परिणाम की दृष्टि हटाने के लिए उस स्वभाव को अपरिणामी हमेशा हमेशा कहा करते थे और लिखने में भी वही उनकी शैली रही।
कई साल पहले सब अपरिणामी से हम घबरा जाते थे, सुगंधी जी का अपरिणामी निष्क्रिय
घबरा जाते थे।
पहले शुरू
क्यों घबराने की क्या जरूरत?
अपरिणामी
द्रव्य स्वभाव अपरिणामी है, पदार्थ परिणामी है लेकिन द्रव्य स्वभाव है वो अपरिणामी है, क्योंकि वो परिणाम रहित है, वो तो हमेशा सामर्थ्य रूप ही रहता है और वही परमात्मा तत्व है। तो कहते हैं
पदार्थ और स्वभाव में क्या अंतर है? पदार्थ और स्वभाव में क्या अंतर
है? पदार्थ है वो प्रमाण का विषय है और स्वभाव है वो निश्चय नहीं का विषय है, दोनों में वो अंतर है। पदार्थ द्रव्यपूर्ण पर्यायात्मक है जिसको सत कहते हैं। उमा स्वामी ने क्या कहा? उत्पाद विजय ध्रुव युक्त सत, उसमें जो ध्रुव है वो द्रव्य स्वभाव है और उत्पाद यह है वो पर्याय है और पदार्थ का अस्तित्व दोनों मिलके हैं। अब हुआ है क्या अनादि से कि ध्रुव स्वभाव को छोड़ करके उससे अनजाने रह करके जो उत्पाद ये हो रहा है उतना ही मैं हूं, ऐसा क्षणिकत्व में अपना अस्तित्व को अनुभव करता है, ऐसा ही मिथ्यात्व का प्रकार रहा है। उसे क्या करना चाहिए कि परिणाम को छोड़ करके दृष्टि में से संतान में से परिणाम को छोड़ करके त्रिकाली द्रव्य स्वभाव की दृष्टि हो कि मैं ऐसा हूं, ऐसा अस्तित्व ग्रहण करे त्रिकाली स्वभाव का, तो अस्तित्व ग्रहण करेगा परिणाम, लेकिन अपने को छोड़ करके दृष्टि में से तब दर्शन है वो स्वयं परिणाम है, फिर भी सम्यक दर्शन अपने आप को विषय सम्यक दर्शन सम्यक दर्शन को विषय नहीं करता। एक सेकंड, साथ में उत्पन्न होने वाला सम्यक ज्ञान को भी विषय नहीं करता और सम्यक दर्शन उस वक्त अपूर्व आनंद उत्पन्न होता है उसको भी विषय नहीं करता और वो सम्यक दर्शन चालू रहता है केवल ज्ञान की अवस्था में, तो केवल ज्ञान को भी विषय नहीं करता, उसका विषय स्वयं अपरिणामी ध्रुव अखंड एकाकार आत्म स्वभाव है। क्या बोलो राजू भाई?
परिणाम विशुद्धि नु लक्ष्य रहा करे तो ये अंतराय रूप बने।
हाँ, लक्ष्य रहे तो ज्ञान में लक्ष्य का विषय त्रिकाली अपरिणामी ध्रुव होना चाहिए जो दृष्टि का विषय है, फिर ज्ञान अपने आत्म कल्याण को जाने समझे, आत्म विशुद्धि को जाने समझे, उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन लक्ष्य करे तो दोष है।
परिणाम
विशुद्धि का लक्ष्य द्रव्य सम्यक दृष्टि को नहीं होता, लक्ष्य आत्म स्वभाव का जाता है। परिणाम विशुद्धि परिपूर्ण विशुद्धि वो ध्येय होता है मुमुक्षु का और ज्ञानियों का, ध्येय होता है लेकिन लक्ष्य नहीं होता है। लक्ष्य तो आत्म स्वभाव ही होता है, जो सम्यक दर्शन का विषय है वही ध्येय होता है। हाँ, ऐसा है कि पर्याय दृष्टि है ना हम लोग, इसलिए ऐसा होता है। पर्याय दृष्टि होने के कारण से ऐसा होता है कि पर्याय पर नजर रहता है, इसलिए वो नजर हटाने के लिए वो अपने स्वरूप को अपरिणामी है ऐसा ही बोलने में लिखने में अधिक प्रयोग करते थे, वो ज्यादा प्रयोग इस शब्द का वो करते थे।
ध्रुव और अक्रिय,
ध्रुव मैंने वैसा का वैसा रहना और अक्रिय और निष्क्रिय माने क्रिया रहित, क्योंकि क्रिया पर्याय में होती है, क्रिया पर्याय की फेरनी, एक पर्याय से दूसरी पर्याय बदलती है, उसको बदलने की प्रोसेस को क्रिया कहने में आता है, तो वो तो पर्याय में होता है। जो ध्रुव स्वभाव है, शक्ति रूप है, उसमें तो कोई क्रिया होती
नहीं है,
इसलिए स्वभाव को अक्रिय भी कहते हैं और निष्क्रिय भी कहते हैं। कैसा है आत्मा हमारा?
निष्क्रिय है
कि अक्रिय चिदबिंब है, अक्रिय है फिर भी चिदबिंब है, चैतन्य का बिंब है, जिन बिंब है, ऐसा हमारा मूल स्वरूप है।
जी ने प्रतिमा था,
जिन प्रतिमा था,
अरे वाह,
मैंने जमदा जैसा अपना जिन बिंब है, बाहर में भगवान के जिसका जिन बिंब है, वैसा ही हमारा आत्मा जिन बिंब है, उस रूप अवस्था में भी जमदा, तो कहते हैं कि जिन प्रतिमा हो
केवल अपरिणामी तो परिणाम
ऐसा है। दृष्टि में दृष्टि का विषय होना चाहिए और ज्ञान में लक्ष्य का विषय होना चाहिए और चारित्र में जमने का विषय होना चाहिए, और उन तीनों कहाँ होगा? परिणाम की विशुद्धि में होगा। कहाँ होगा? ये होगा कहाँ? जो परिणाम में विशुद्धि आएगी वहां होगा वो, और जगह नहीं होगा। लेकिन होने का डिवीजन पर्याय में है, ध्रुव में नहीं है। ध्रुव तो वैसा का वैसा रहता
है।
ध्रुव ने पकड़ी ने वैसे किया, ये परिणाम में विशुद्धि थी, वो परिणाम की विशुद्धि की प्रक्रिया है, और कोई दूसरी प्रक्रिया विशुद्धि की है भी
नहीं।
ये वही साइंटिफिक है, ये हम देखते हैं हमारे स्वभाव के प्रति, और विशुद्धि होती है देखने वाले में, वो तो विशुद्ध है ही, वो तो विशुद्ध सुसिद्ध सुसिद्ध
समूह,
तो सिद्ध स्वरूप है, तो शुद्ध है ही, उनमें तो शुद्धि होना नहीं होना का अवकाश भी नहीं है। देखिए ये ऐसा चैतन्य का चमत्कार है कि उस चैतन्य बिंब को कोई देखता है, चैतन्य बिंब को कोई देखता है तो देखने वाले को विशुद्धि
हो जाती है। चमत्कार है,
बहुत बड़ा चमत्कार है। ध्रुव क्षणिक पर्याय में आता नहीं और क्षणिक पर्याय ध्रुव में जाती है, फिर भी वो पर्याय सिर्फ देखती है तो विशुद्ध हो जाती है। इतना प्रभाव पड़ता है त्रिकादी स्वभाव का, उतना पर्याय पर प्रभाव पड़ता है।
आपने ध्येय और लक्ष्य को अलग अलग बताया, वो स्पष्ट मुझे समझ में नहीं आया।
अच्छी बात है, मुझे लगता था कि ये प्रश्न तो आना चाहिए था, जब नहीं आ रहा है। कभी ध्येय और लक्ष्य एकार्थ में शब्द, एकार्थ में भी शब्द प्रयोग किया जाता है, और कभी अलग अलग अर्थ में वो शब्द प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान का विषय को भी ध्येय कहते हैं और साधक का अंतिम साध्य को भी ध्येय गोल के रूप में बोला जाता है, और गोल को कभी लक्ष्य का स्थान में लक्ष्य भी बोला जाता है, और जो आश्रय का स्थान त्रिकाली स्वभाव है उसको भी लक्ष्य बोला जाता है। तो दोनों शब्द एक जगह के एक दूसरे की जगह में प्रयोग किया जाता है और अलग अलग अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। तो जहां जो प्रकरण चलता हो उस प्रकरण अनुसार उसका अर्थ घटन हमारी समझ में आना चाहिए। दृष्टांत लेते हैं कि गुरुदेव ने जो सूत्र दिया, जो आत्म जागृति के टाइटल पेज पर देते हैं कि पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत वही वास्तविक शुरुआत है, तो तो वहां जो लक्ष्य शब्द है वो साध्य रूप पूर्ण अवस्था के स्थान में है, और जहाँ हमको पहुंचना है ऐसा हमारा ध्येय भी उसको कह सकते हैं, साध्य भी कह सकते हैं और लक्ष्य स्थान भी कह सकते हैं। और अपने स्वरूप ध्यान का विषय होने से ध्येय भी कह सकते हैं, और निश्चय नहीं में ज्ञान का विषय होने से उसको लक्ष्य और ध्येय भी कह सकते हैं और लक्ष्य भी कह सकते हैं, लेकिन वो साध्य नहीं है, उतना फर्क है। साध्य तो अवस्था होती है, साधक और साध्य अवस्था होती है, और ये स्वरूप आश्रय के स्थान में होने से ध्येय और लक्ष्य दोनों शब्द से उनका प्रयोग किया जाता है।
सुगंधी की
अपरिणामी आत्मा का प्रदेश प्रदेश में पूरी पूरा होता हूँ, और मैं अपनापन बनाता हूँ।
मतलब क्या है कि वो दृष्टि प्रधानता से, और दृष्टि प्रधानता से ज्ञान में जो अभिप्राय उत्पन्न हो जाता है, इस अभिप्राय प्रधानता से सभी प्रकार के चर्चा और लेखनी में अभिव्यक्ति कर देते हैं। तो उनकी शैली में श्रद्धा प्रधानता और श्रद्धा प्रधानता से उत्पन्न होने वाला जो अभिप्राय, उस अभिप्राय की प्रधानता से ही बहुत सी बातें आई हैं। इसलिए ये जो संकलन है, उस संकलन का नाम भी टाइटल भी हमने द्रव दृष्टि प्रकाश ऐसा चुना है, नाम चुनने का यही कारण है। तो द्रव दृष्टि की प्रधानता से ही बात किया करते थे या दिखा करते थे, इसलिए उनके वचनामृत को दिखाने के लिए द्रव दृष्टि ऐसा एक ग्रंथ का नाम भी दिया गया है, यही कारण से दिया गया है। परिणति में परिणति प्रकट है, इसलिए देखते हैं परिणति को। प्रश्न क्या है, मैं हिंदी में दोहराता हूँ, अगर कोई मुमुक्षु ज्ञानी को पहचानता है तो ज्ञानी की परिणति को देखते हैं या ज्ञानी के स्वभाव को देखते हैं? तो प्रगट परिणति जो है वो दिखने में आती है, और प्रगट स्वभाव तो वो सदृश है, जैसी परिणति है सदृश अप्रकट स्वभाव है, इसलिए स्वभाव की पहचान भी साथ साथ हो जाती है, लेकिन प्रकट परिणति के माध्यम से होती है, ऐसे सीधी सीधी नहीं होती है। स्वभाव शक्ति रूप होने से इसकी जो स्वभाव रूप व्यक्ति होती है, स्वभाव सदृश व्यक्ति होती है, वहां से पहचान होती है। इसलिए स्वरूप की पहचान भी ज्ञान वेदन द्वारा होती है, क्योंकि वो प्रगट है, स्वभाव प्रगट है। अपना स्वाध्याय शिविर में चला था, उसमें गुरुदेव का वचनामृत जब शुरू में पढ़ा था तो उसमें आया था कि ज्ञान अंश प्रगट है, ज्ञान में स्वभाव अंश प्रगट है, इसलिए स्वभाव से ज्ञान अंश से स्वभाव पहचाना जाता है। तो इससे इसके पहले वो परिणति में विशेष रूप से स्वभाव सदृश परिणति प्रकट होने से परिणति के द्वारा परमात्म स्वभाव का दर्शन होता है, तो ज्ञानी में भी परमात्मा का दर्शन हो गया, लेकिन परिणति के माध्यम से होता है। बीच में जो माध्यम है वो परिणति है, सीधा स्वभाव देखने में नहीं आ सकता।
तो गुरु की प्रगत परिणति से मनुष्य क्या जानता है, क्या समझता है कि उसको स्वभाव का वेदन होता है?
एक ऐसा नियम है कि जो वेदन रूप परिणाम है अगर वो देखने में आवे तो देखने वाले को भी वेदन उत्पन्न हो जाए। और इसका दृष्टांत अपन दे सकते हैं कि रास्ते पे कोई टीरियंस प्राणी भी, एक पिल्लू होता है, कुत्ते का बच्चा, उसको किसी ने मार दिया या कोई व्हीकल के साथ एक्सीडेंट हो गया तो चिल्लाएगा, उसको दर्द होगा खूब चिल्लाएगा, तो उसकी वेदना को देखने वाले को क्या होगा? वेदना होगी, वेदना नहीं होगी। आप हॉस्पिटल में जाएंगे और कोई वेदना से पीड़ित मरीज को देखेंगे तो वो अपना सगे संबंधी कोई नहीं है, अगर सगा संबंधी होता तो और वेदना हो जाएगी, अपना पुत्र होता, पिता होता, कोई सगे नजदीक के स्वजन होता तो और वेदना हो जाएगी, लेकिन कोई संबंध नहीं होता तो भी वेदना को देखने वाले को वेदना होगी नहीं। वैसे ही आप कोई पार्टी में जाते हैं वहां खुशहाल वातावरण होता है, सब हंसते हैं, तो देखने वाले को क्या होता है, खुशी होती है कि नहीं
होती? होती है।
खुशी लोगों को देख करके देखने वाले को खुशी होती है, रोने वाले को देख करके रोना आता है, वेदना को देख करके वेदन आता है। तो ज्ञानी का जो ज्ञान वेदन है वो देखने पर ऐसा वेदन क्यों नहीं आएगा? आएगा ही आएगा, क्योंकि ऐसा ही वेदन होने में ऐसा ही प्रकार है, निमित्त नैमित्तिक रूप से है, तो बहुत प्रैक्टिकल है, समोपान होते हैं।
वेदना देखकर वेदना और खुशी देखकर खुशी, ये नियम है या अपवाद है?
नहीं, नियम से वेदना होगा, नियम से ऐसा देखेगा,
चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी, चाहे ज्ञानी हो।
इसमें क्या है कि ज्ञानी को अनुकंपा आती है, किसी जीव को दुखी देखकर ज्ञानी ने शास्त्र क्यों लिखा, ज्ञानी ने उपदेश क्यों दिया, अपने लिए लिखा क्या? जगत के पीड़ित दुखी जीवों को देखकर उनको अनुकंपा आती है, तो उपदेश देते हैं, शास्त्र लिखते हैं, अनुकंपा का उसको आए बिना नहीं रहेगी।
पीड़ित को देख के जो पीड़ा का अनुभव होता है वो अपना देह देह के बारे में
होता है, देहाध्यास के कारण से होता है, लेकिन सामान्य तौर से दृष्टांत ऐसा है कि सभी देहाध्यास तो है देखने वाले, तो उनको वेदना होती है कि नहीं होती है? ऐसे कोई मुमुक्षु की भूमिका में आता है, उत्कृष्ट मुमुक्षु की भूमिका में आता है, तो ज्ञानी का वेदन देख करके उसको ज्ञान वेदन आने की परिस्थिति पैदा हो जाती है।
ज्ञानी का वेदन देखकर कुछ विचार तो उठता होगा, क्या मतलब उसने समझा, क्या पहचाना?
विचार से भी एक अधिक कदम होता है, विचार में वस्तु परोक्ष होती है, जबकि यहाँ जो ज्ञान का विषय है वो प्रत्यक्ष है, और प्रत्यक्ष की असर ज्यादा पहुंचती है। विचार का विषय परोक्ष होता है तो इसकी उतनी असर नहीं आती है जितनी प्रत्यक्ष, जैसे किसी का मृत्यु हुआ हमारे स्वजन का, परिवार का, पर हम वहां नहीं है तो हमको समाचार मिलता है, तो समाचार मिलता है उसमें जो असर आती है, और जिसने मृत्यु अपनी नजर से देखा, दोनों में कितना अंतर होगा?
बड़ा अंतर,
बहुत बड़ा अंतर होगा। मृत्यु देखने वाले को उस मृत्यु की घटना को अपने परिणाम से हटाना मुश्किल हो जाएगा, तो रात को अकेला सोने को जाएगा तो वो प्रसंग हाथ में आ जाएगा, करेंगे आज ऐसा प्रसंग बन गया हमने देखा, लेकिन सुनने वाले को उतना नहीं होगा। ये तो बहुत प्रैक्टिकल है। ये टीवी पर हम देखते हैं क्रिकेट के दिखाते हैं और दस कैमरे लगा करके अलग अलग एंगल से दिखाते, फिर भी वहां देखने के लिए पहुंचते हैं जाते हैं लोग पैसा खर्च के लिए, अपने कमरे में एयर कंडीशन कमरे में देख सकते हैं और दस एंगल से देख सकते हैं, वहां तो देखने वाले को एक ही एंगल देखने को मिलेगा, जहां बैठा है वही एंगल से देखेगा। फिर भी रस आने के लिए, परिणमन आने के लिए, भाव को आविर्भाव करने के लिए प्रत्यक्षता का प्रयोग के बराबर कोई प्रयोग नहीं है। प्रत्यक्षता का प्रयोग के बराबर तो क्या, इसका कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं। इसलिए प्रत्यक्ष सत समागम है, उसमें अगर ज्ञानी की परिणति का दर्शन हो जाएगा तो उतना रस आएगा, उतना रस आएगा, क्योंकि मुमुक्ष है इसलिए सबको नहीं आएगा। तो आपने प्रश्न पूछा कि सबको होता है, लेकिन खास भूमिका का ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उत्कृष्ट मुमुक्ष होगा तो उसको परिणाम आएगा, और यही सुगानी जी के विषय में दृष्टांत है कि वहां और भी सुनने वाले तो थे। जो सुगानी जी ने प्रवचन सुना तो क्या सभा में दूसरे लोग नहीं थे, दूसरे भी 200-300 भाई बहने तो हमेशा सुनते थे। सबको परिणाम क्यों नहीं हुआ, तो उन्होंने सिर्फ सुना नहीं था, सिर्फ विचार नहीं किया था, लेकिन उन्होंने प्रत्यक्ष परिणति का दर्शन कर लिया था। गुरुदेव जब बोलते थे कि राग और ज्ञान भिन्न भिन्न है, तो परिणमते हुए बोलते थे, परिणमन अभेद राग से हो ऐसे वो प्रवचन नहीं करते थे, भिन्न होकर के प्रवचन करते थे। तो भिन्नता उन्होंने दिखाई दी, दिखाई दी तो भिन्नता कैसे हम कर सकते हैं वो बात समझ में आ जाती है। प्रैक्टिकल साइड से, प्रैक्टिकल देखने से प्रैक्टिकल साइड की समझ होती है, थियरी में उतनी समझ नहीं आती जो प्रैक्टिकल से समझ में आती है। ऐसा थियोरेटिकल ज्ञान में और प्रैक्टिकल ज्ञान में बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, इसका उदाहरण क्या परिणति खुद ही है, उसका तो कोई उपमा हो सकती नहीं है। परिणमन का क्या उपमा हो सकती है, वो तो अनुपम परिणमन है, ज्ञानी का वो अनुपम परिणमन है, उसकी उपमा दी जा सकती नहीं है। तो इस तरह से यहाँ भी कहते हैं कि यह ज्ञान वेदन कैसे उदय होता है, के अपने अखंड त्रिकालीन अपरिणामी अस्तित्व में स्वपने के अनुभव में सहजी उदय राग से भेद करता ज्ञान निशंकित निराकुर संवेदन के साथ प्रत्यक्ष प्रमाण रूप प्रकट होता है। वो प्रकट होता है, वो प्रत्यक्ष प्रमाण रूप प्रकट होता है, उसके दूसरा प्रमाण लेने की भी आवश्यकता नहीं है। और यह संवेदन वृद्धि पामता पामता अनंत सुख और ज्ञान का लाभ आखिर में करा देता है, वो इनका अंतिम परिस्थिति रिजल्ट आए बिना नहीं रहेगा। कैसा है अपना स्वभाव का श्रद्धा का विशेष स्वभाव कि अप्रसिद्ध और अवेदक है, वो शक्ति रूप होने से अप्रसिद्ध है और पर्याय में वेदन है, स्वभाव में वेदन शक्ति में वेदन नहीं है, इसलिए अवेदक है और ये मुख्य है, ज्ञान ज्ञान है वो मुख्य है। और अखंड स्वभाव में श्रद्धा के अस्तित्व रूप में वो प्रसरते ही ऐसा अखंड स्वभाव में श्रद्धा का श्रद्धा अस्तित्व को ग्रहण करती है, अस्तित्व रूप में व्याप व्यापक होते ही प्रसिद्ध ज्ञान वेदन, प्रसिद्ध ज्ञान वेदन हो फिर भी वो गौण होकर मुख्य तो स्वभाव ही रहता है, वेदन गौण होता है, प्रसिद्ध वेदन गौण होकर एक ही काल त्रिकालीय वर्तमान दोनों भावों का अनुभव वो प्रमाण का विषय हो गया जिसमें मुख्य कौन यही वेद ज्ञान है। ऐसा प्रकार का परिणमन को ही वेद ज्ञान कहते हैं। ऐसा हमने गुरुदेव के प्रवचनों का सार रूप में समझा है। राग से पृथक होकर भिन्न होकर ज्ञान का अनुभव ऐसे ही होता है, त्रिकाली के आश्रय से ही होता है, अन्यथा नहीं होता। योग होने से अप्रैल में गुरुदेव की जन्म तिथि पर मिलना होगा। आगामी तिथि पर आने का उनका भाव है, लेकिन वो आ सके नहीं थे, लेकिन भाव रहते थे तो मिल लेते थे। शुद्धात्मा स्नेही हाँ, हम तो शुद्धात्मा का हमारा स्नेह है, शुद्धात्मा से स्नेह, आत्मा का आत्मा से स्नेह है। दूसरी बात हमारे पास
नहीं है। वागदेव जति मंदर भगवान जय हो, परम कृपाल श्री कान गुरुदेव मनो, जय मित्रा दिगंबर जैन धर्म मनो, जय।